उम्मीदों के पलक पे जो सूरज खुद का उगाते हैं, हौसलों के पर आगे
सर, आई हार्डली वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ सक्सेस फॉरएवर।
थैंक यू।
हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आज यहाँ आकर।
बहुत बढ़िया लग रहा है। और मैं अपने शब्दों में बताना चाहूँ तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे हॉलीवुड स्टार को महसूस होता है।
क्या बात है, ये तो हमारी खुशनसीबी है। साथ ही साथ हम सभी ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे, जब आप छोटे थे स्कूल गए तो किस तरह के ख्वाब आपके दिमाग में पलने लगे, आप क्या क्या सोचने लगे कि मैं क्या बनूंगा, जैसा हर बच्चा सोचता है, और किस तरह के आपके दोस्त हुआ करते थे और आज वो किस मुकाम पर हैं?
जी, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई करते समय मेरे दिमाग में तो वही बातें चलती थी कि मैं भी एक रईस आदमी बनूंगा, अच्छे मुकाम पर पहुंचूंगा। हाँ। लेकिन वहाँ का जो प्रिपेक्स था, जो आयाम था वहाँ का, उस प्रिपेक्स के मुताबिक ये था कि जैसे ही आदमी मेट्रिकुलेशन करेगा तो आर्मी में भर्ती होगा। तो फिर वो आर्मी में भर्ती होने वाली बात मेरे दिमाग में आने लगी और मेरे साथी भी सेम सपना उनका भी ये बन गया कि आर्मी में भर्ती होना है। अभी जो मेरे साथ में थे लोग, सारे के सारे 5-6 फ्रेंड थे हमारे, हम सारे के सारे कोई एयरफोर्स में, कोई नेवी में, कोई आर्मी में है, और वो लोग भी अभी आर्मी में सर्विस कर रहे हैं। लेकिन मैं आर्मी में सर्विस करने के बाद करते करते ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सिक्योर लाइफ नाम की, और मैंने इसमें इसके माध्यम से, और इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हमारे पास है उसके माध्यम से इसमें जो भी उन्नति हुई है उसी की वजह से हुई।
क्या बात है। तो जब आपके साथी वहाँ हैं, आज भी आप उनके टच में तो होंगे, उनका क्या रिएक्शन है अगर आप इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो सही समझते थे इसे?
उनको तो, मेरे साथियों को तो अभी आज अगर ये आज की जो पोजीशन को देखेंगे तो उनको एक ही चीज महसूस होगा कि लग रहा है ये कोई सपने वाली बात आ गई है उनको। हाँ। उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज टाइप से है कि ऐसे कैसे एक इंसान थोड़े से टाइम में, हमारे साथ में पढ़ा हुआ, हमारे जैसा ही, थोड़े से समय में कैसे इतनी बड़ी अचीवमेंट्स ले सकता है।
क्या बात है। साथ ही साथ आपने जब बिजनेस की शुरुआत की होगी, वैसे भी काफी चैलेंजिंग रहा होगा, तो आपको काम के लिए बाहर रहना पड़ता होगा, शहर से दूर, आपके बच्चे भी छोटे थे, आपकी वाइफ उन्हें संभालती होंगी, तो किसी तरह की फैमिली प्रॉब्लम्स आई, आप कैसे सब कुछ मैनेज करते थे अगर ऐसा कुछ हुआ तो?
जी देखो, आजकल जो पढ़े लिखे अगर हस्बैंड वाइफ है तो दोनों के दोनों जॉब करते हैं मोस्टली, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में आने के बाद प्रॉब्लम आने की बजाय मुझे सपोर्ट मिली, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी में आने के बाद मैंने क्या किया कि मिसेज को, अपनी वाइफ को जॉब से हटा दिया।
हाँ।
और फुल टाइम उनको मदर बना दिया बच्चों को केयर करने के लिए।
हाँ।
और मैं अपना काम करता रहा, एंड इस बात में मैं ब्लेस्ड हूँ, आई एम ब्लेस्ड कि वो देवी की तरह है, वो उन्होंने जो घर की जिम्मेदारी थी पूरी की पूरी अपने ऊपर ली और मुझे इस काम को करने के लिए पूरा सपोर्ट किया, दिल से सपोर्ट किया।
तो आपके केस में वो बात खरी उतरती है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन।
श्योर।
आपकी सफल जिंदगी की तो एक परिभाषा सभी ने देख ली, आपके हिसाब से सफल पति होना और सफल पत्नी होना, उसकी परिभाषा क्या है?
मैं जहाँ तक मानता हूँ सफल पति वही है जो वाइफ उसका खर्चा करे, जो वाइफ खर्चा करे उसके खर्चे से डबल स्पीड से जो पैसा कमाए वो सफल पति रहता है।
क्या बात है
जी।
सभी पत्नियां ये सुनकर बेहद खुश होंगी, और मुझे लगता है आप उन सभी हस्बैंड्स को इंस्पायर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, जैसा अभी आपने बताया कि काम के सिलसिले में आपको अक्सर शहर से बाहर रहना पड़ता था, तो इस दौरान आपको बच्चों को टाइम नहीं दे पाते होंगे, और उनकी जो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है या कुछ भी स्कूल में फंक्शंस होते हैं जहाँ पर आपको शामिल होना जरूरी होता था, वहाँ आप नहीं हो पाते होंगे, तो आपने सब कुछ कैसे मैनेज किया?
उसका ऐसा है कि जब मैं वहाँ पे रहता था घर पे, और उस टाइम पे कोई ऐसी मीटिंग वगैरह आती थी तो मैं नेचुरली मैं जाता था बच्चों के साथ में, लेकिन अगर मैं नहीं रहता था तो वाइफ ने फुली, मतलब पूरे दिल से सारी चीज़ों की जिम्मेदारी ले ली थी, और मैं नहीं रहने से उसने कभी ऐसे फील नहीं होने दिया कि वो नहीं है, किसी वजह से कोई काम नहीं होगा, वो उसको कंडक्ट कर लेती थी, उनको संभाल लेती थी। जी,
और आपने अपनी फैमिली के बारे में इतना कुछ बताया, आपके माता पिता जो अभी भी गांव में रहते हैं और उनकी उम्र भी है काफी, तो वो वहाँ रहते हैं, तो आप उनके लिए क्या क्या करते हैं जो माँ बाप के लिए करना चाहिए?
जी जी, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पेरेंट्स दोनों मदर फादर बहुत खुश हैं, क्योंकि एक पेरेंट्स की सबसे बड़ी खुशी क्या रहती है कि उनकी औलाद जो है या उनके बच्चे हैं कामयाब हो जाए।
हाँ जी।
और हम दो सिस्टर हैं मेरी, और एक मैं हूँ, एक ब्रदर हूँ, तो हम सारे के सारे अच्छी तरह से सेटल हैं और अच्छी तरह से कामयाब हैं, तो दे आर सो हैप्पी। और गांव में रहना उनको पसंद है, तो वो बोलते हैं कि जब तक हम मतलब अच्छे अस्पृष्ट हैं, ठीक हाथ पैर काम कर रहे हैं, तब तक हम गांव में रहना पसंद करेंगे, और जब दिल चाहता है उनका वो यहाँ पे आ जाते हैं। वैसे मेरे घर से जो सिटी से घर से मुश्किल से 15 मिनट्स का रास्ता है, 15 मिनट का रास्ता है, वो कभी भी आ जाते हैं, और कभी भी दिल करता है हमको बुला लेते हैं, अब वैसे हम जाते रहते हैं। लेकिन उनका मानना है कि जब हम जब ज्यादा ओल्ड एज में, क्रॉनिक ओल्ड एज में आ जाएंगे, तभी हम सिटी में जाकर रहेंगे जब मजबूरी में, अदरवाइज हम गांव में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पर प्रॉपर्टीज है, उसको भी संभालते रहते हैं, और वहीं पर रहना मतलब उनकी अभी इच्छा है, दिली इच्छा ये है कि वो उधर रहे।
सर, आपका भैंसों से बड़ा प्यार है, उस बारे में कुछ बताइए।
दरअसल ये है कि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी किसान है, किसान थे, और छोटे से किसान थे, उनके पास केवल 2.5 एकड़ जमीन थी, 2.5 एकड़, 2 और आधा, 2.5 एकड़ जमीन थी, और 2.5 एकड़ जमीन में इतना सब कुछ नहीं होता कि पूरे परिवार का खर्चा मीट आउट हो जाए, चल जाए, इसलिए हम लोग उस खेती के अलावा साथ साथ में भैंस पालन करते थे, और मेरे बचपन से लेके और अभी तक, आज तक भी हमारे घर में भैंस है। तो जब मैं छोटा था, तो जब मैं पढ़ाई करके आता था स्कूल से, आफ्टरनून में दोपहर तक पढ़ाई करता था, उसके बाद आफ्टरनून में मैं भैंस लेके उनको चराने के लिए जाना पड़ता था, और जाता था, और अगर मेरे होमवर्क की बात आती थी मेरे घर पे, जो मतलब जो स्कूल से होमवर्क बताया जाता था, तो होमवर्क के लिए बुक्स भी मैं साथ लेके जाता था, तो भैंस को चराते चराते अपना होमवर्क जो करना था कर लेता था।
जी।
क्यों? क्योंकि रात को पढ़ने के लिए लाइट ही नहीं थी घर में।
हाँ।
और लाइट अगर दिया जलाते मिट्टी तेल का, तो मिट्टी तेल का बहुत ज्यादा खर्चा आता था, तो मेरे पास यही ऑप्शन थी कि भैंस भी चराऊं और दोनों के दोनों साथ साथ उसका अपना होमवर्क भी वहीं पे डे टाइम पे निपटा लो।
क्या बात है, मतलब आप पहले से ही मल्टीटास्किंग कर लिया करते थे। तो इसी बारे में जब बात चली, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है?
जी मैम, एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो जब मैं मतलब मैंने मैट्रिकुलेशन किया था, तो मैं चाहता था कि आगे पढ़ूं।
हाँ।
लेकिन घर वालों की ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मुझे 11वीं में एडमिशन दिला सके, तो उन्होंने मुझे मतलब बड़ी उनकी भी इच्छा थी कि वो पढ़ाएं, लेकिन उनकी मतलब उनकी उस टाइम पर औकात नहीं थी पढ़ाने की, हिम्मत नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे एक ही रास्ता बताया कि आप अभी कोई ना कोई अपनी जॉब पकड़ लो। तो मैंने जैसे पहले एक जॉब किया, प्राइवेट जॉब किया करीब करीब 1 साल। क्यों? क्योंकि मेरी फौज में भर्ती होने की जो इच्छा थी उसके लिए मेरी कंप्लीट एज नहीं हुई थी।
अच्छा।
तो 16 साल में मैंने मैट्रिक पास कर लिया था, 17 साल का होने के बाद मैं उसमें फौज में आ सकता था। 17 साल का होने के बाद फिर मैंने फौज में एग्जाम वगैरह दे के फौज में भर्ती हो गया, और भर्ती होने के बाद मेरी इच्छा तो थी पढ़ने की, पढ़ाई करने की, तो इसलिए मैंने भर्ती होने के बाद फिर अपना पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तो पहले मैंने इंटर किया प्राइवेटली, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद MBA किया। और ये कि उस वहाँ पर फौज में नौकरी करते करते ही जो टाइम मुझे शाम के टाइम पर जो कुछ भी जो भी फ्री टाइम मिलता था या लोग सो जाते थे, तो मैं अपनी बुक्स को पढ़ के अपने एग्जाम की तैयारी करता था। जी मैम,
जब आपने शुरुआत की तब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का शुरुआती दौर था इंडिया में खासकर, और कई लोग कभी इस कंपनी उस कंपनी के चक्कर में काफी कंफ्यूज हुए और उन्होंने अपना करियर भी थोड़ा खराब कर लिया। तो आपने किस बेसिस पर ये सब कुछ रिस्क उठाया, अगर ऐसा कहें तो?
दरअसल बात ऐसे है रितेशा जी कि जब मैंने इस कंसेप्ट को देखा था सिक्योर लाइफ को, तो मैं कच्चे गड्ढे की तरह था, मुझे कुछ भी किसी चीज के बारे में मालूम नहीं था कि इस तरह की कोई कंपनियां हैं जो जहाँ पे आदमी का करियर डिस्टर्ब भी हो सकता है, कंफ्यूज भी हो सकता है। तो पहले टाइम मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में पता लगा था, वो सिक्योर लाइफ का
जी।
और उस सिक्योर लाइफ के बारे में जिस शख्स ने मुझे बताया था, जो भी मेरे स्पॉन्सर थे, उन्होंने अपनी सफलता का जो प्रूफ मुझे दिखाया, लाख लाख रुपए महीने के चेक्स जब मुझे दिखाए
जी।
तो मुझे एक ही चीज पे बिलीव हुआ कि ये शख्स मेरे जैसा आर्मी की सर्विस करने वाला बंदा है, जब ये लाख रुपए महीने के चेक्स ले सकता है और इसको जब सिक्योर लाइफ दे सकती है, तो आने वाले टाइम में मुझे भी दे सकती है, इसलिए मैंने बिलीव किया और इसमें काम करने में शुरू किया।
जी हाँ, लेकिन लाख लाख रुपए के चेक तो आपने देखे होंगे, बट शुरुआती स्ट्रगल तो कुछ रही होगी, उसके बारे में बताइए।
स्ट्रगल के बारे में अगर मैं बताऊं तो जैसे ही मैंने इसमें ज्वाइन किया, ज्वाइन करते ही कुछ लोगों ने मेरे को बोलना शुरू कर दिया कि ऐसी कंपनियां तो ट्रैप हो जाती हैं, लेकिन उनकी बातों पर ज्यादा मैंने बिलीव नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने सक्सेसफुल बंदे को सक्सेस लेते हुए देख चुका था, वो भी मेरे जैसे बैकग्राउंड वाला बंदा, तो इसलिए मैंने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कई लोगों ने तो बहुत मजाक भी उड़ाना शुरू किया। एक बंदे ने तो मुझे बोला, मेरे से बोला, एक बंदे ने मुझे बोला कि आपका तो चेक नहीं आएगा, आपके कोई पैकेज भी नहीं आएगा।
हाँ।
तो पहले पैकेज आ गया, जो मैंने पैसे दिए थे उसके बदले मुझे पैकेज आ गया।
हाँ।
तो मैंने बोला साहब पैकेज तो आ गया, तो बोला नहीं नहीं पैकेज तो आ गया लेकिन आपको चेक नहीं आएंगे। तो कुछ दिन के बाद मुझे 1000 रुपए का चेक आ गया, तो बोला 1000 का चेक आया, आपने तो 8000 रुपए दिए थे इसमें। तो फिर उन्होंने बोला और बाकी है, तो फिर मेरा 3000 रुपए का चेक आ गया, तो मैंने बोला मेरा 3000 का चेक आ गया। तो फिर उन्होंने बोला अभी तो आपने 8 दिए थे, आपके अभी भी 5 बाकी है। तो जब मेरे 8000 के आ गए तो उन्होंने बोला आपका तो आ गया लेकिन आपसे आगे वाले बंदों का नहीं आएगा। ऐसे करके हर हालत में वो लोग नेगेटिव बातें कर रहे थे। कई लोग तो ये भी बोलते थे कि इसके चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो 8000 की टोपी पहननी पड़ेगी। ऐसे करके लोग मजाक उठाते थे। लेकिन इसमें मैं कहां तक सफल हो सकता हूँ ये मुझे दिखाई दे रहा था, जब मेरे आगे आने वाले जो स्पॉन्सर थे या जो मेरे आदर्श थे, दिन को देख के मैंने ज्वाइन किया था इस सिस्टम में, इस कंसेप्ट में, तो उनकी सफलता को देख के मुझे तो दिख रहा था कि जब ये उस मंजिल पे गए हैं, इन्होंने वही काम किया है, वही अपॉर्चुनिटी इनके पास है, वही प्रोडक्ट्स हैं, जब ये उस मंजिल पे पहुंच रहे हैं तो मैं भी उस मंजिल पे पहुंचूंगा, इसलिए मैं कंटिन्यू अपना इस काम को करता रहा।
सिक्योर लाइफ की आपकी यात्रा में आपको किन किन लोगों ने मोटिवेट किया और वो किस तरह से आपको मोटिवेट किया करते थे?
जी, सिक्योर लाइफ में आने के बाद मेनली मैं जिनको याद, जिनका नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर ओम प्रकाश जी, जिन्होंने, जो मेरे स्पॉन्सर रहे, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कराया और उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और उनके भी गुरु मिस्टर संजय जैन जी, जिनसे मैं शुरुआती दिन से ही टच में हूँ। और फिर नेक्स्ट आते हैं उनके भी गुरु मिस्टर राजीव चतुर्वेदी
जी,
जिनसे मैं टच में हूँ लगातार। तो इन तीनों को मैं, इनकी बातें सुन सुन के मोटिवेट होता था, इनसे मिलता था तो भी मोटिवेट होता था, इनकी अचीवमेंट्स को देख के भी मोटिवेट होता था। और इन लोगों की अचीवमेंट, मोटिवेट करने की जो शैली थी वो बहुत ही निराली थी। ये ट्रेनिंग के माध्यम से मुझे मोटिवेट करते थे, बातचीत करते थे तब भी मुझे मोटिवेशन मिलता था, और ये फंक्शंस वगैरह के जो टूल्स वगैरह दे के भी मुझे मोटिवेट करते थे। और सबसे बड़ा जो मोटिवेशन मुझे मिला था कि ये मेरे जो स्पॉन्सर मिस्टर ओम प्रकाश जी थे, वो मुझे दिल्ली एक ऐसा ही एक सिक्योर लाइफ का एक प्रोग्राम था, उसको दिखाने के लिए लेके गए थे। और उस प्रोग्राम को देखने से पहले मैं ये सोचता था कि ये कोई छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वहाँ देखने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पे तो लोग करोड़पति बन सकते हैं, जब और लोग बन रहे हैं तो मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ। जी,
और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ये इंडस्ट्री, आज भी इसमें लोग इतना कुछ देखने के बाद भी थोड़ी शंकाएं रखते हैं, यकीन नहीं करते हैं, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे?
बिल्कुल, श्योर। क्या है रितिशा जी, कोई भी अच्छी चीज और नई चीज आती है तो उसका हर एक चीज का विरोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 2-3 एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे जब फर्स्ट में ट्रेन आई थी, तो ट्रेन को जब एक छोटी पतली पटरी पे जब चलाया जा रहा था तो लोगों को बोला कि आप इसके अंदर बैठ जाओ, तो सबने मना कर दिया, बोला हम अपनी जान का जोखिम नहीं लेंगे, हम अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे। तो अंग्रेजों को मजबूरी में बंदर को बैठा के ट्रेन का ट्रायल लेना पड़ा, लोग नहीं बैठे। लेकिन आज देखो, ट्रेन में बैठने के लिए लोग टिकट ले लेके बैठते हैं, लाइन लगा के टिकट लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम विरोध हुआ जब बिजली आई, बिजली के यूज के बारे में लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन बिजली आई तो लोग बोलते थे कि ये तो मतलब अगर इसको हाथ लग जाएगा, नंगे तारों को हाथ लग जाएगा तो ये आदमी को मार सकती है, तो बिजली का बहुत विरोध हुआ। ऐसे ही जब LPG गैस आई थी तो उसका भी विरोध हुआ था कि ये तो घर में रखा हुआ एक बम का गोला, कभी भी फटेगा तो सारे परिवार को मारेगा। लेकिन आज LPG को भी यूज कर रहे हैं क्योंकि उसका प्रॉपर यूज मालूम है, आज बिजली को भी यूज कर रहे हैं, आज ट्रेन को भी लोग यूज कर रहे हैं। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट, अभी बहुत पुरानी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है ये, अभी इंडिया में आए हुए मुश्किल से, हार्डली अभी मुश्किल से 10-11 साल हुए हैं। और अभी काफी सारे लोग इस पे कुछ बिलीव भी करने लगे हैं, इसको समझने भी लगे हैं। तो जो लोग भी शक करते हैं वो सिर्फ इसी वजह से करते हैं कि उनको इस चीज की जानकारी नहीं होती है। जैसे मान लो किसी भी आदमी से, कोई भी आदमी जिसने लंदन देखा नहीं है, उससे आप अगर कोई ओपिनियन लोगे कि लंदन कैसा है तो कैसे बताएगा, नहीं बता पाएगा। लेकिन यहाँ पे इंडिया में इतने एक्सपर्ट लोग हैं जो चीज नहीं देखी उसके बारे में भी ओपिनियन दे देते हैं कि जिसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। जैसे बिजली के करंट से अगर कोई एक आदमी को दिक्कत हो जाती है या एक आदमी को कुछ जख्म हो जाते हैं, तकलीफ हो जाती है, तो लोग बोलेंगे कि बिजली बेकार है। बिजली तो बेकार नहीं है, उसका तरीका, यूज करने का तरीका बेकार था, अदरवाइज बिजली तो अच्छी थी। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में भी कई लोग अपने तरीके से काम करके कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले पाए या नहीं लेते हैं, तो लोग इसको बेकार समझते हैं और दूसरे लोगों को भी दिमाग में वही बातें आ जाती है। लेकिन आज की डेट में हजारों नहीं, लाखों लोग सफल है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से और इस कंसेप्ट की वजह से लोग अपने पर्सनल एयरक्राफ्ट, पर्सनल हेलीकॉप्टर, पर्सनल एयरक्राफ्ट, पर्सनल एरोप्लेन भी मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी है, और इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से लोग आने वाले टाइम में बड़े बड़े मुकाम हासिल करेंगे, बहुत ही बड़े बड़े मुकाम हासिल करेंगे।
तो इसी के साथ आपका फ्यूचर विजन जो है काफी अच्छा है ऐसा लग रहा है।
श्योर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आने वाले टाइम में इस नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट का, और खासकर मैं सिक्योर लाइफ के बारे में बात करना चाहूंगा कि सिक्योर लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 8 लाख 10 लाख रुपए महीना ले रहे होंगे, और उसकी गिनती सो मनी हजारों में रहेगी, लाखों में रहेगी। इतनी ऐसा अचीवमेंट काफी सारे लोग लिया करेंगे, और आज इस पे बिलीव भी कर रहे हैं लोग, बिलीव भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह पे कहीं पे ऐसा मौका नहीं है कि आप पैसे बचाओ और एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करो। दूसरी जगह करोड़ों लगाओ तो आदमी लाखों नहीं कमा पाता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगाने के नाम पे जीरो है और कमाने के नाम पे करोड़ों है।
जी हाँ।
तो ये बात आज नहीं तो कल लोगों को समझ में जरूर आएगी।
जी हाँ।
श्योर।